اس پروگرام کے اخراجات جوائس مر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔
ہم شادمانی اور لطف اٹھانے کے مضمون پر بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ آج پہلی مرتبہ یہ سن رہے ہیں تو جسو نے کہا کہ میں اس لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، سب کہیں کثرت کی زندگی سے لطف اٹھانے کے لیے۔ بھرپور زندگی یہاں تک کہ چھلکنے لگے۔ ہم شادمانی کے تعلق سے کافی سنتے رہتے ہیں، خداوند کی شادمانی میری قوت ہے، میں نے شادمانی کھو دی ہے، مجھے زیادہ خوشی چاہیے۔ لیکن آج صبح میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس شادمانی ہے، یسو ہمارے اندر ہے اور ہمارے پاس وہ ہے جو یسو کا ہے، وہ ہم میں ہے۔ پاک روح کے تمام پھل، بہت سی اچھی چیزیں ہم میں ہیں، یسو نے ہمیں اپنا اطمینان دیا۔ اس لیے مسئلہ یہ نہیں کہ کچھ حاصل کریں جو کہ پہلے ہی ہمارے پاس ہے، بلکہ مسئلہ سیکھنے کا ہے وہ کیا ہے جو ان چیزوں کو ہماری زندگی میں ظاہر ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ اس لیے ہمارے پاس شادمانی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو ہم نظر انداز کرتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے لطف اٹھائیں۔ جی، لطف اٹھائیں، لیکن ہر چیز ہی جشن یا فراغت یا خاص دن نہیں ہوتی، ہماری زیادہ تر زندگی عام ہی ہوتی ہے۔ سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، او خدایا ہفتے کا آخر آ گیا، ہفتہ، اتوار، او پھر سے سوموار آ گیا۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، میں اس سے نفع حاصل کروں گی، میں اپنے ہر دن سے فائدہ اٹھاؤں گی جو مجھے ملا ہے۔ لیکن آپ کو اس کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں جب آپ 70 کی دہائی میں ہوں تاکہ آغاز کریں۔ آپ جس بھی عمر میں ہیں ابھی آغاز کریں اور ہر روز اس سے اتنی خوشی حاصل کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ کی زندگی کسی بھی لمحے ایک منٹ میں ختم ہو سکتی ہے۔ یہ نہایت ہی حیران کن ہے کہ وقت کس تیزی سے گزرتا ہے، اس لیے آپ اپنا وقت ضائع کرنا نہیں چاہیں گے۔ آمین کہیں کہ میں مزید وقت ضائع نہیں کروں گی۔ ہم اپنی زندگی سے لطف اٹھانا چاہیں گے۔ میرا یقین ہے کہ مسیح کے وسیلہ ہم روزمرہ کی عام زندگی سے لطف اٹھا سکتے ہیں، تاکہ ہم ہر چیز سے لطف اٹھائیں جو ہم کرتے ہیں۔ شاید آپ سوچیں کہ جوائس کوئی بھی شخص کپڑے دھونے، ٹریفک میں گاڑی چلانے سے لطف نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں آپ کر سکتے ہیں، کل رات ہی ہم نے اس راز کو سیکھا تھا۔ آپ میں سے کتنوں کو یاد ہے کہ وہ راز کیا ہے؟ تو پھر زور سے بولیں، شکر گزاری۔ شکر گزار ہونا، کسی بھی چیز کے لیے ہر وقت شکر گزاری کرتے رہیں تو آپ اپنی زندگی سے خوشی اور مسرت کو جاری ہوتا محسوس کریں گے۔ یوحنا 16:24، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کلام پر غور کریں اور اسے قبول کریں، کیونکہ ہم زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بات ہمیشہ ہی ہمیں اعمال، کوشش اور کشمکش میں لگائے رکھتی ہے، اور یہ اکثر ہی ہمیں مایوس کرتی ہے۔ لیکن لینے کا مطلب ہے کہ اسے قبول کرنے والا بننا اور وہ لینا جو پیش کیا جا رہا ہے۔ میں آج آپ کو کلام سے یہ باتیں ثابت کروں گی کہ خدا ہمیں کبھی نہیں کہتا کہ کچھ حاصل کریں، وہ بتاتا ہے کہ وہ سب قبول کریں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم ابلیس سے قبول کرنے میں زیادہ اچھے ہیں بجائے اس کے کہ خدا سے قبول کرنے میں۔ ابلیس کو آپ کو پھنسانے میں زیادہ وقت نہیں لگتا کہ آپ الزام، احساس جرم یا خود ترسی کو یا حسد کو یا ایسی باتوں کو قبول کرتے ہیں، لیکن اکثر ہم نہیں جانتے کہ خدا سے ہم ان تمام چیزوں کو مفت کیسے حاصل کریں، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اچھی چیزوں کا حق نہیں رکھتے جو وہ ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے۔ آمین، کیونکہ جیسی میں ہوں ہم ان کا حق نہیں رکھتے، مگر یہ حقیقت نہیں ہو سکتی، خدا میرے لیے یہ یقیناً نہیں کر سکتا۔ लेकिन आइए एक फैसला करें कि खुदा के कलाम पर यकीन करना शुरू करें जो ये कहता है, ना कि खुद से करने की कोशिश करें। आइए सिर्फ यकीन करें। आपको उस शख्स की कहानी याद होगी जो अंधा पैदा हुआ था, यसु ने उसे शिफा दी, और जब फरीसी वहां आए तो वो यकीन नहीं करते थे कि वो लड़का नाबीना था, इसलिए उन्होंने उसे पूछना शुरू किया कि उसने कैसे शिफा दी, उसने क्या अमल किया, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अंधे थे। फिर वो उसके वालदैन के पास गए कि क्या ये वाकई अंधा था, ये सब कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है, लेकिन हम नहीं जानते कि ये कैसे हुआ। और वो दोबारा लड़के से सवाल पूछते रहे। वो बोला, मैं जानता हूं कि पहले मैं अंधा था और अब मैं देख सकता हूं। उसने ये सब कबूल किया था, और हमें जरूरत है कि हम वो सब समझने की जरूरत को तर्क करें जो खुदा करता है। सिर्फ यकीन करें जो वो कहता है और छोटे बच्चे की तरह कबूल करें। जब तक आप छोटे बच्चे की तरह कबूल नहीं करते, तो आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। इसका ये मतलब नहीं कि आप निजात नहीं पा सकते। मैं यकीन रखती हूं कि इसका मतलब ये है कि आप बादशाही में जिंदगी बसर नहीं कर सकेंगे, आप उसकी भरपूरी में दाखिल नहीं हो सकेंगे, और ना बादशाही के असल फवाइद से लुत्फ उठा सकेंगे। ये बात मुझे रंजीदा करती है। मेरा ख्याल है बहुत से लोग हैं जो खुदा से प्यार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बदहाल जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि खुदा से कैसे हासिल करना है। वो नहीं जानते कि कलाम पर कैसे यकीन रखें। अगर आप लुगत में देखें तो लफ्ज यकीन का मतलब है कबूल करना, और कबूल करने का मतलब है यकीन करना। इसलिए खुदा पर यकीन करना हमें आराम दिलाता है, और खुदा से कबूल करना हमें उसके आराम में दाखिल करता है, और इससे ज्यादा हमारे लिए शानदार बात और कोई नहीं कि खुदा के आराम में दाखिल हो। जानते हैं कि मेरे जैसी शख्सियत के लिए कैसी बड़ी बात है कि यहां खड़ी होकर आपके सामने ये काम करूं। दर हकीकत ये कहूंगी कि मैं जरा बराबर फिक्रमंद नहीं हूं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरा आगाज ऐसे नहीं हुआ था, यानी अगर मैं सिखा रही होती और कोई शख्स उठकर चला जाता तो मैं उस दिन टूटकर बिखर जाती। जब हम अदम तहफ़ुज़ का शिकार होते हैं तो हमारे तसव्वुरात बुरे हो जाते हैं। एक मर्तबा एक औरत आई और वो वहां मेरा पैगाम 5 मिनट तक सुनती रही और फिर उठकर चली गई। उसने मुझे तोड़ दिया, यानी मैं सारा दिन परेशान रही। और एक खातून आई और मुझे बताया कि वहां एक खातून थी जिसे पैगाम शुरू होने के 5 मिनट बाद जाना पड़ा। वो चाहती थी कि आपको बताऊं कि उसके लिए काम पर जाना जरूरी है, लेकिन आप उसके लिए अहम हैं, इसलिए उसके लिए यही काफी था कि वो 5 मिनट तक रुक सके। देखिए हम कितनी जल्दी किसी बात से मनफी बात अखस कर लेते हैं, हालांकि वो अच्छी होती है। इसलिए अगर हम तसव्वुर ही करना चाहते हैं तो क्यों ना कुछ अच्छा तसव्वुर करें, ना कि कुछ बुरा तसव्वुर करें जो आपकी जिंदगी को तबाह कर दे। खैर, ये परेशानी लिए कि सब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। बात ये नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना इससे कि खुदा क्या सोचता है, और ये बात अहमियत रखती है। इसलिए खुदा को खुश करें, खुदा को खुश करने वाले बने, ना कि लोगों को खुश करने वाले, वरना आप खुश नहीं रह सकेंगे। आमीन। अब हम जायजा लेंगे कि आप कबूल करने में कितने अच्छे हैं, और जो वक्त आज हमारे पास है, मैं चाहती हूं कि आप यहां से जाकर खुदा से वो सब हासिल करने के लिए तैयार हों जिसके लिए आप खुद को हकदार नहीं समझते, और ये जानना कि आप हकदार नहीं हैं कबूल करने को ज्यादा बेहतर बना देगा। यानी ऐ खुदा, मैं हक तो नहीं रखती, लेकिन मैं इसे रद्द भी नहीं करूंगी, क्योंकि तू भला है, इसलिए मैं तेरे कलाम पर यकीन रखती हूं और इसे कबूल करती हूं। मैं वाकई चाहती हूं कि आप अपनी दुआओं में हर रोज ये कहना शुरू करें जब आप कुछ गलत कर बैठें, और खुदा से ये जरूर कहें कि खुदाया मुझे माफ कर। सिर्फ ये ना कहें कि मेहरबानी से मुझे माफ कर, बल्कि कुछ इंतजार करें और कहें, मैं माफी को यीशु के नाम में अभी कबूल करती हूं, और फिर उसकी हुजूरी में कुछ देर रुके रहें और ये बात अपने अंदर उतरने दें कि खुदा ने आपको माफ कर दिया है। वो वादा करता है कि आपके गुनाहों को इस कदर दूर फेंक देगा जितना मशरिक से मगरिब दूर है, और उनको कभी याद भी नहीं करेगा। मैं यीशु के नाम में कबूल करती हूँ। अब आप में से कितनों का ख्याल है कि ये बात आपकी मदद करेगी अगर आप सिर्फ कुछ मजीद वक्त सर्व करें। लेकिन ऐसी दुआ नहीं कि ऐ खुदा मुझे माफ कर, मेहरबानी से मुझे माफ कर, ऐ खुदा अगर तू इस मरतबा मुझे माफ कर दे तो मैं वादा करती हूँ कि ये दोबारा नहीं करूंगी। जी हाँ, आप ऐसा ही करेंगे। मैं इससे मुतालिक मनफी बात नहीं कर रही। खुदा से ये वादा करना बेकार है कि आप ये दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऐसा करेंगे। क्या जानते हैं कि अगर आप वाकई खुदा से प्यार करते हैं और आपका दिल ठीक है तो वो आपको बार बार माफ करेगा। लेकिन ये कहने का फायदा नहीं होगा अगर आप ये कहना बंद ना करें और फिर कुछ वक्त लें और कहें कि मैं इसे कबूल करती हूँ। खुदा के रहम के बारे में क्या ख्याल है? खुदा के रहम को कबूल करने के बारे में क्या ख्याल है? आमीन। हमारे एक बच्चे की इस दिसंबर में 40वीं सालगिरह होगी। क्या ये कुछ अजीब नहीं कि आपके बच्चे की उम्र 40 साल हो जाएगी और उसके ताल्लुक से कहानी है जो मैं बताना चाहूंगी जब मैं रहम पर पैगाम देती हूं। क्योंकि लूका 12वें बाप में कहानी है कि जब यीशु के शागिर्द खेतों में चलते हुए बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे क्योंकि उनको भूख लगती थी और ये सबत का दिन था, और वो गंदुम की बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। और फरीसी, यकीनी तौर पर आप मजहबी फरीसियों को जानते हैं, वो हमेशा देख रहे होते हैं। इल्जाम लगाने वाला इब्लीस भी हमेशा देख रहा होता है। अगर आप कोई गलती करते हैं तो वो उंगली उठाता है, नहीं नहीं नहीं। इसलिए उन्होंने उन्हें देख कर कहा कि तेरे शागिर्द वो क्यों करते हैं जो सबत के दिन करना उनको रवा नहीं है। लेकिन यीशु ने उनकी तवज्जो पुराने अहद की एक बात की तरफ दिलाई कि क्या तुम नहीं जानते कि दाऊद बादशाह ने क्या किया जब वो भूखे थे और हैकल में नजर की रोटियां खाई जो उनको खाना बिल्कुल भी रवाना था। उन्होंने शरीयत को तोड़ा और फिर भी बेगुनाह रहे। मेरा कानूनी दिमाग भी ऐसा ही सोचता था कि तुम हुक्म भी तोड़ो और बेगुनाह कैसे रह सकती हो। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। देखें, अक्सर आपकी जरूरत आप पर हावी हो जाती है कि आप खुदा के हुक्मों को मुकम्मल पूरा करें। खुदा ने मुझे एक अच्छी मिसाल दी कि इसके मायने की वजाहत हो जाए। जब हमारा बेटा डैनी बहुत छोटा था तो ये दुनिया का सबसे मुनज्जम बच्चा नहीं था। जब हम उसे सिखाने की कोशिश करते कि उसे खेल के साथ काम भी करना है, इसलिए हमने उसे मुख्तलिफ कामों की फहरिस्त दी। यानी कुत्ते को खाना दो, ये करो वो करो, ये कुछ ज्यादा काम नहीं थे। लेकिन हमने कामों की फहरिस्त दी थी जो कि उसे हर रोज करना थे, और जब वो उनको करता तो हम उनके आगे दुरुस्त का निशान लगाते, और जब दुरुस्त के निशान ज्यादा होते तो हम उसे शाबाश देते, और अच्छे कामों के लिए हम उसे तोहफा देते और हम उसे तहरीक देने की कोशिश करते। शुक्र है कि खुदा हमारे साथ ऐसे नहीं करता। हम खुदा के साथ ऐसे निजाम में नहीं है कि जो खुदा देता है पहले उसके लायक हों। आप सिर्फ ईमान से कबूल करते हैं ये जानते हुए कि आप उसके हकदार नहीं हैं। सुने, हकीकत यह है कि अगर आप सोचते हैं कि आप हकदार हैं तो आप एक बड़ी मुश्किल में हैं, बनिस्बत इसके कि आप जानते हैं कि आप हकदार नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये फरोतन है जो मदद हासिल करता है, ना कि मगरूर। खुदा फरोतनों को तौफीक देता है लेकिन मगरूरों और मुतकब्बिरों का मुकाबला करता है। खुदा ने यह मिसाल मुझे दोबारा याद दिलाई जब मैं कलाम के इस हिस्से को समझने की कोशिश कर रही थी। लिखा है, वो कहता है कि मैं रहम पसंद करता हूं, ना के कुर्बानी को। देखें खुदा क्या कहना चाह रहा है कि मैं ये चाहूंगा कि तुम्हारी मुश्किल में तुम पर रहम करूं, ना कि आप उस बात के लिए कुर्बानी देने की कोशिश करें जो किसी भी तरह से आपसे गलत हो गया। मैंने ये किया था कि जिंदगी से लुत्फ उठाने को कुर्बान कर दूं, क्योंकि मेरा ख्याल था कि मैं किसी भी तरह से अपनी जिंदगी से लुत्फ उठाने का हक नहीं रखती। आज सुबह हमने हाथ उठवा कर देखा और पूछा कि कितने लोग हैं जो वाकई ये महसूस नहीं करते हैं कि वो जिंदगी से मुकम्मल लुत्फ नहीं उठा रहे। क्योंकि आपको ऐसा साथ से मसला है, यानी आप शायद इसका हक नहीं रखते, और बहुत 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 से हाथ उठे थे। बहुत मर्तबा हमारे इसी नौयत के मसाइल होते हैं और जब तक कोई उनको सामने ना लाए तो हम ये जान भी नहीं पाते कि हमारा ये मसला है। آمین۔ اس طرح خدا نے یہ مثال مجھ پر ظاہر کی۔ ڈینی ایک دن باہر کھیل میں مصروف تھا۔ پڑوس میں ایک شرارتی لڑکا تھا جو اسے ہمیشہ تنگ کرتا تھا، اور اکثر ہی وہ شرارتی لڑکا اسے بال چھین لیتا اور اسے اٹھا کر پھینک دیتا۔ ہمارا گھر ایسا تھا کہ آپ سامنے کا دروازہ استعمال کر سکتے تھے، لیکن بچے گیراج کا راستہ استعمال کرتے اور ہم ہمیشہ ہی اسے کھلا رکھتے۔ گیراج کا دروازہ کچن کی طرف کھلتا تھا اور ساتھ ہی ایک ڈرائنگ روم تھا، اور جب ڈیو گھر ہوتے، اگر گھاس نہ کاٹ رہے ہوتے یا کوئی اور کام کرتے تو اس کمرے میں بیٹھ جاتے، شاید ٹی وی پر فٹ بال کا میچ دیکھتے یا پھر ایسے ہی مشاغل ہوتے۔ مجھے یاد ہے کہ اکثر ڈینی وہاں سے آتا اور اس کی آواز سن سکتے تھے۔ جب وہ وہاں سے آتا، ابو، اور جب وہ اس کا چیخنا سن رہے ہوتے تو وہ صوفے سے جلدی اٹھتے یا حیران کن ہوتا اور دروازے پر دیکھتے کہ کیا مسئلہ ہے،
اور وہ روتے ہوئے ان سے اس لڑکے کی شکایت کرتا،
اور ڈیو جھٹکے سے دروازہ کھولتے اور اس کی مدد کرتے۔ جب خدا ہماری پکار سنتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ڈیو ذرا ٹھہریں، پہلے ڈینی کے کاموں کی فہرست دیکھ لیں۔ میں چاہتی ہوں کہ پہلے دیکھیں اس نے اپنے تمام کام مکمل کیے ہیں، اگر کیے ہیں تو پھر اس کی مدد کریں، اگر نہیں تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں۔ سنیں، جب ہم بطور والدین ایسا نہیں کرتے تو ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ خدا بطور الہی باپ ہم سے ایسا کرتا ہے؟ وہ اس سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہے جتنا کہ آپ اپنے بچوں سے بھی پیار نہیں کرتے۔ اور اگر آپ اس سے پیار کرتے ہیں، اور جب آپ مشکل میں ہوں، اور اگرچہ آپ سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن جب آپ اسے پکارتے ہیں تو وہ آپ کی مدد بھی کرے گا۔ دیکھیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ نے جو کچھ غلط کیا ہے وہ اس کی اصلاح نہیں کرے گا، لیکن خدا یہ سب اپنے پیار میں کرتا ہے، نہ کہ اپنے غضب اور قہر میں۔ آئیے مل کر خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں، آپ خدا کے ساتھ اپنے تعلق میں خود کو دباؤ میں نہ رکھیں۔ آپ جلدی اسے سمجھ جائیں گے تو میں جلدی جان چھوڑ دوں گی۔ خدا کے ساتھ اپنے تعلق میں دباؤ محسوس نہ کریں، بلکہ پرسکون رہیں اور لطف اٹھائیں۔ آپ اس میں خوش ہوں اور وہ آپ میں خوش ہو۔ ہم خدا کا خوف بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ ہمیں خدا کا پاک خوف ہونا چاہیے، تعظیم کرنی ہے، لیکن اس کا مطلب خوف زدہ ہونا نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ وہ نہ کریں جو اسے پسند نہیں۔ اس لیے ہمیں پاک خوف رکھنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تمام دن اس قابل ہوں کہ اس کے ساتھ رہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ یہ سچا وعدہ ہے، اور اس سے لطف اٹھانے کے لیے آپ کو یہ محسوس نہیں کرنا کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے تو یہ ایسا کام نہیں جس کا آپ کو کوئی اجر لینا ہے یا مشقت ہے، یعنی سارا دن کوئی خاص دعا کرنی ہے، بہت سی آیتیں پڑھنی ہیں، اور کچھ درست اقرار کرنا، اور بہت سے اچھے کام کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ ان میں سے کسی بھی طرح کے مسائل سے دوچار نہیں۔ کیا واقعی میں صرف اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں؟ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو خدا آپ کی مدد کرنے کے فیصلے سے پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے کتنے کام درست کیے ہیں، کہ آیا آپ کی مدد کرے یا نہ کرے۔ آپ کو جب بھی خدا کی مدد کی ضرورت ہو اور آپ اسے پکاریں، اور وہ آپ کی مدد کرے گا۔ یعقوب کے خط میں ہے، اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے، جو سب کو فیاضی اور بغیر کسی ملامت کے دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں، اگر آپ مشکل میں پڑ جائیں اور جب آپ خدا کو پکاریں، اگرچہ کہ آپ اتنے اچھے نہیں ہیں، تو بھی وہ آپ کو حکمت دے گا کہ اس مشکل سے کیسے نکلنا ہے، اور یہ کام بغیر ملامت کے کرے گا۔ دیکھیں، خدا ہی میرا سب کچھ ہے، یہ میری زندگی ہے، مجھے खुदा के साथ खुश रहना है। मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जिससे मैं खौफजदा हूँ या सोचूं कि वो मुझसे नाराज है। मैं खुदा के साथ पुरसुकून हूँ। मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि जैसे मैंने अपने घर में नरम गुदास जूते पहन रखे हूँ और अपनी सबसे आरामदेह कुर्सी पर कंबल लेकर आग ताप रही हूँ और कहूँ, खुदा तू शानदार है, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। मैंने कई साल इस एहसास में गुजार दी कि खुदा मुझसे हर वक्त नाराज रहता है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इल्जाम क्यों महसूस करती हूँ, और अगर मैं ये महसूस ना करती तो फिर भी इल्जाम महसूस करती, क्योंकि मुझे इल्जाम महसूस नहीं हो रहा। क्या ये आज किसी की जरूरत है? खुदा इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले। बाइबल कहती है कि उसका रहम हर सुबह ताजा है, हर दिन। मेरा ख्याल है कि वो रात को नया तैयार करता है, क्योंकि हमने कल वाला सारा इस्तेमाल कर लिया था। क्या आप कल के दिन उसका सारा रहम इस्तेमाल कर चुके हैं, ताकि खुदा आज के दिन के लिए रहम करे जिसकी आपको जरूरत है? देखिए, आप जानते हैं कि आप क्या कुछ गलत करते हैं। हम बहुत से गलत काम कर जाते हैं और कई बातों का इल्म भी नहीं होता जो हम गलत करते हैं। देखें, कौन है जो खुदा की पाकीजगी के मयार पर पूरा उतर सकता है? कोई भी नहीं। देखें, बाइबल कहती है कि जिस तरह तुमने मसीह को कबूल किया, कहें कबूल किया, जिस तरह तुमने मसीह को कबूल किया उसी तरह आपको अपनी जिंदगी भी गुजारनी चाहिए। देखें, जब आपने मसीह को कबूल किया तो आपकी क्या हालत थी? आप अपनी जिंदगी में खुद से हार चुके थे, आप अपने कामों से मायूस हो चुके थे और आप अपनी तमाम तर सलाहियतों से मायूस हो चुके थे कि किसी तरह अपने अच्छे कामों का सिला पाएं। बुनियादी तौर पर आपने खुदा से कहा कि मैं हाजिर हूं अपनी खस्ता और अबतर हालत में, अगर तू चाहता है तो मुझे ले, मैं झुक जाती हूँ। आमीन। और इस मौके पर आप सिर्फ यही कर सकते थे कि यीशु को कबूल करें। वाओ। ओ मेरे खुदा, ये हम सब की जिंदगियों में कैसी शानदार तब्दीली है। और इस वक्त भी यहां बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी है। मैं इन लम्हात को जाया नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं आज यहां पर खुदा के मसा को महसूस कर रही हूं। मैं सिर्फ कहना चाहूंगी कि क्या कोई आज यहां ऐसा है जिसने अभी तक अपनी जिंदगी मसीह को नहीं दी है? मैं आज आपके लिए दुआ करना चाहती हूं, और आज आपके लिए मौका है कि आज आप अपने आप को उसके सुपुर्द कर दें। सब मेरे साथ कहें, आसमानी बाप, मैं तुझसे प्यार करती हूं, मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूं, मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकती, मैं सब छोड़ती हूं। कुछ वक्त लें और ऐसा करें और सब कुछ जाने दें, मैं सब छोड़ती हूं, मुझे ले जैसी मैं हूं। यीशु, आज मैं तुझे कबूल करती हूं। इस पर गौर करें। कि मैं यीशु को कबूल करती हूं। ए यीशु, मैं तुझे पूरे दिल से कबूल करती हूं, और जो मैं हूं और जैसी भी मैं हूं और जो मैं नहीं हूं, मैं अपना आप तुझे देती हूं। मेरी मदद कर ताकि वो बनूं जो तू चाहता है। मैं निजात के लिए ईमान लाती हूं, मैं नए सिरे से पैदा हुई हूं, मुझे माफी मिल गई है, अब मैं आसमान के सफर पर रवा हूं। मैं इस सफर से भरपूर लुत्फ उठाऊंगी। आए सब खुदा के लिए ताली बजाएं। ओ हालेलुया। याद रखें, आप वो नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। ये अहम है कि हम खुदा के रहम और माफी को कबूल करना सीखें। तो फिर ही हम दूसरों पर रहम करने वाले होंगे जिनको उसकी जरूरत है। एक अच्छा कबूल करने वाला एक अच्छा देने वाला है, और यही बात हमारी जिंदगी को हर दिन पुरजोश बनाती है।